Market Master. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंथ में आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें लेकर हाजिर हैं और इन खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
वार्म वेलकम सिद्धार्थ।
आप दोनों को नमस्कार।
और अब आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से कार्यक्रम को, जिसे लेकर के उपस्थित हैं राजेश।
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस हिट रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई। Sensex crosses 83,000 level and Nifty settles at 25,433 in intraday trade. India's retail inflation at 3.65% in August for the current financial year. And Union Cabinet approves PM E-Drive scheme with an outlay of 10,900 crores.
घरेलू शेयर बाजार के सूचकांकों ने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर को छुआ। सेंसेक्स 83,000 के स्तर के पार गया, निफ्टी 25,433 पर बंद हुआ। चालू वित्त वर्ष के लिए अगस्त में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति 3.65% पर और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम ई ड्राइव योजना को स्वीकृति दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच आज के कारोबारी सत्र में भारतीय घरेलू शेयर बाजार के सूचकांकों ने रिकॉर्ड उच्च समापन स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दिन के कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 83,000 के स्तर को पार करके और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 25,433 के स्तर पर पहुंचने के साथ साथ दोनों सूचकांक अपने नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। कारोबार की समाप्ति पर 30 कंपनियों का समूह सेंसेक्स 1,439 अंक यानी 1.7% बढ़कर 82,962 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 470 अंक यानी लगभग 2% के आसपास की वृद्धि के साथ 25,388 पर था। एनएससी में 139 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ जबकि 28 अपने निचले स्तर पर रहीं। बीएसई के मिड कैप में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 1% के आसपास बढ़त देखी गई।
India's equity benchmark indices registered record closing high in today's trading session amid positive global cues. Both the indices hit their fresh all-time highs with the BSE Sensex crossing 83,000 level mark and the NSE Nifty at 25,433 in the intraday trade. At the closing bell, the Sensex, which is a pack of 30 companies, surged 1,439 points or 1.7% at 82,962. And the NSE Nifty was up 470 points or 25,388 with a gain of nearly 2%. In the NSE, 139 companies hit their 52-week high, 28 hit their 52-week low. In the broader market of the BSE, mid-cap gained more than 1% and small-cap indices added nearly 1%. In the Sensex index, except Nestle India, which suffered a marginal loss around 0.1%, all other 29 out of 30 companies registered gains. The top gainers today were Bharti Airtel, added more than 4%, NTPC nearly 4%, and Mahindra & Mahindra more than 3%. In sectoral indices of the BSE, all 20 sectors ended in a positive territory. The top gainers today were metal, more than 3%, telecommunications, more than 2.5%, and tech, as well as power, increased more than 2%. The overall market breadth at the BSE was positive, as out of 4,069 companies, shares of 2,337 companies advanced, 1,609 declined and 123 remained unchanged.
विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की मजबूती के साथ 83 रुपये और 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. डॉलर इंडेक्स अंतरदिवसीय कारोबार के दौरान 101.72 पर था. सिद्धार्थ कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और शेयर बाजार से जुड़ा पहला सवाल आपके लिए. कल सेंसेक्स में 398 अंक की गिरावट देखी गई थी, वहीं एनएफटी की बात करें तो 122 अंक वो नीचे आया था. आज जबरदस्त उछाल हमने देखा जहां सेंसेक्स 83,000 के स्तर को पार भी कर गया और निफ्टी 25,433 तक पहुंच गया. दो दिनों के अंदर इस बदलाव पर आपके कमेंट्स?
नहीं देखिए, आज जब शुरुआती कारोबार शुरू से ही पॉजिटिव टेरिटरी में था, बेसिकली फ्रॉम क्यूज एशियन मार्केट्स या यूएस मार्केट्स का जो से क्यूज थे, तो मार्केट वॉज इन द ग्रीन, मतलब पॉजिटिव था. बट आई थिंक सेकेंड हाफ के बाद सडनली वी सॉ अ सर्ज इन द मार्केट्स, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स के ऊपर वी सॉ इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन. हमने देखा कि मार्केट में एक सर्ज आया. मतलब मोटे तौर पे जो चार पांच कारण इसके पीछे, एक तो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स कट, उसमें एक ये लग रहा है कि अब जो मीटिंग है फेड की 17-18 तारीख को उसमें होगा. फिर आपका ईसीबी जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से भी ऐसे संकेत आ रहे हैं, और साथ साथ चाइना में भी एक संकेत है कि वो भी कुछ अपने जो होम लोन मॉर्गेजेस हैं उस पर इंटरेस्ट रेट घटाएंगे ताकि कंजम्पशन बढ़े. तो एक तो ये कारण है, और दूसरा आप देखेंगे बड़े तौर पे अप्रैल मई के बाद से, जून से अगर हम देखें तो एफआईआईज का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार, मतलब इंडियन मार्केट्स में लगातार बढ़ रहा है. जो अगर केवल सितंबर की ही बात देखेंगे तो आप देखेंगे तकरीबन 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस साल, प्लस उसके साथ साथ हमारी अपने जो इन्फ्लेशन है वो ठीक है, मतलब इट इज स्टिल मतलब अंडर मैनेजेबल लेवल्स, प्लस क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे हैं, डोमेस्टिक डीआईआई जो हम हमेशा बोलते हैं, चाहे वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हों या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो डोमेस्टिक, तो वो एक इन्वेस्टमेंट, प्लस इंडिया की एक पॉजिटिव जो क्लाइमेट, वो मुझे लगता है मतलब ये सभी कारण, मतलब जो है शायद उन्होंने आज मार्केट को एक पुश दिया. और इमीडिएट रीजन मुझे जो लगते हैं वो यही थे कि यूएस मार्केट्स वर इन द ग्रीन, एशियन मार्केट्स इन ग्रीन, देन नाउ ऑलमोस्ट श्योरिटी दैट देयर विल बी अ 25% बी कट इन, सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो पुशिंग इन्वेस्टर्स इन टू इंडियन मार्केट, प्लस इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूज टू बी स्टेबल. तो मुझे लगता है वो सब कारण एक साथ, एक भरोसा अभी भी जो है निवेशकों का हिंदुस्तान में बना हुआ है, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बाजार में जो इस तरह का निवेश.
सो यू आर राइट इन सेइंग दैट देयर वर लॉट ऑफ सेंटिमेंटल बूस्ट टुडे. वन न्यूज साइटेड वाज़ द चाइना कटिंग रेट बाय 50 बीपीएस ऑन 5 ट्रिलियन मॉर्गेजेस टू स्पर कंजम्पशन. द सेकेंड ऑफ कोर्स इज द यूरोपियन सेंट्रल बैंक. इन फैक्ट द रिजल्ट शुड कम आउट प्रीटी सून नाउ. And the third was which the market is attributing is the easing of India-China tensions, because our External Affairs Minister Mr. Jayashankar has said there is some progress on border talks. In fact, 75% of disengagement problems are over, and this has kind of brought about good cheer in the market because these sentiments are pretty much positives. Apart from that, Siddharth, what about concentration on buying of large cap stocks in the market today? And what's your take on the Nifty Metal Index, which went up by 2.9% today?
See, I think the reasons you have attributed, yes, and fact that yes, now the people are basically, the strategy of the investor is also kind of risk averse in putting money into, it's a more of a defensive strategy, I would say, and they want to put money more where they are sure of. So they are looking basically at the growth, the real numbers. It's not, I think, a little moving away a little from the narrative based, that this sector is expected to do well. So rather than that, I think the investor is focusing more on where they see actual growth happening, the kind of sales, the kind of profitability. So I think that is why the reason we saw today, as you said, people preferring to go for large caps. So basically, rather than getting into stocks where there is no narrative or story telling that these sectors are expected to do. So the focus is actually which the companies, the bigger companies or the companies where they see real value actually already built in, and going forward they see that the value would be further enhanced. So I think that is the reason why investor is getting more into large caps, or the reason immediately. So there is a change a shift in the strategy, in the mind of the investor. So they're definitely putting in money, but there's a little bit of they want to be sure the sectors or the companies where they're putting in money, that they don't end up losing money.
Okay, today the fear gauge index was below 15. In fact, it was 11.14, and it is said when it is below 15, bullish momentum may gain strength. So in the coming days, are we going to be bullish?
So this is something I don't think it is, but I think it will be difficult. I think it will all depend, because there are too many things happening simultaneously. See, at one point you are seeing interest rate pushing in investment, but at the same time there is also another story coming out of US that which is being currently being downplayed, probably because of the US elections. So people say recession or a slowdown in US, Eurozone not doing well. So plus if you see oil, low oil prices good for India. But do they also tell you the other story also? Is there so all those things are still developing. We don't see any concrete evidence still that yes, an oil price, fall in oil prices definitely means a slowdown in demand. So I think we to say that it will be bullish, I think it will be a little diff. It is something we need to wait and watch how markets will behave in the coming days. But yes, it will all depend on a lot of events which are currently evolving, unfolding. And US elections, I think, will keep the market for some time. I feel this may not give you a very definitive, there could be, we can see ups and downs. But yes, would there be a huge correction? That is something I would say I would hazard a guess that I rule out a very huge correction in Indian markets.
So China cutting rates by 50 BPS, is this going to have any effect on us?
Obviously, I think it will spur demand. So I think that is the reason, because that is why I think we are seeing this kind of a surge we saw today also. So coupled with a lot of reasons. No, because people have to find reasons to come out and invest in the market. So I think that is one of the reasons. Plus, I think our own domestic consumption, the way the government has, we have tackled our own inflation, monsoons have been good. So, and you would have seen yesterday, there's a huge Prime Minister is major emphasis on semiconductors. So our own e-vehicle policies, the way government is also the capital expenditure plans for the current financial year and also going forward. So the thrust on keeping macroeconomic fundamentals, everything in good shape, I think that also is bringing in investors to the Indian market. And where else in the world, as the Prime Minister yesterday said, when the chips are down, come and invest in India. So I think India still continues to be a destination where people are still making money. We continue to be the fastest growing economy in the world. So I think there are several positives to Indian stock market story.
So what would your advice be to the investors?
See, advice to investor is basically, obviously, like any good company, any good IPO, any good. So you need to do your homework good. And plus, I think the best is as we keep talking and as we keep seeing the results, the systematic investment plan, one of the safest ways, if you are not a financial expert, put your money and give it to somebody who's an expert in that. You can come to the stock market, put your money through mutual funds, which is also gaining huge traction. Investment, I think August itself, I think the money coming to mutual funds, equity mutual funds was about, to both the debt and the equity side was about 38,000 crores, and of which through a systematic investment plan is 20. So investor has to be cautious. You have to come with a mindset, because markets are already high. It's not a, so you need to be careful. You pick up good companies, pick up large caps, or whichever, even medium, mid cap, small cap, but you need to do your homework well. And I trade carefully. Plus, I don't think market is a place where you should expect overnight, make money overnight. I think one needs to be very, very careful. You need to come with a clear mindset that yes, you're going to be staying here. So do your homework well, and
long term is important. Huh?
Long term, medium term. Plus, I think the way you invest money, the sectors, the companies where you put in money. So you need to do good study.
Okay. सिद्धार्थ, अभी मार्केट को लेकर के हम बातें कर रहे हैं, तो इसमें अगर देखें तो आजकल जो जिस तरह से मार्केट रिस्पॉन्ड कर रहा है, निवेश की दृष्टि से लोगों के लिए लगता ही काफी महत्वपूर्ण है. और अगर हम आईपीओस की बात करें, खासतौर पे एसएमई आईपीओस को लेकर के, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि निवेशकों को किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एक सिस्टम बनकर के हमारे सामने आ चुका है जिसमें लोगों को लगता है कि पैसा बनाना बहुत आसान है, निवेश करना बहुत आसान है, हालांकि केयरफुल रहना भी जरूरी होगा.
नहीं देखिए, स्ट्रैटेजी तो एक ही है, जो आप अभी जो मैंने बोला कि चाहे एसएमई आईपीओ हो, चाहे कोई किसी और भी तरह का आईपीओ हो, या आप सेकेंडरी मार्केट में लगा रहे हो, आपको कंपनी की बढ़िया से आप उसकी जो है स्टडी करें. आपने देखा होगा अभी आज के अखबारों में एक कंपनी जिसका आईपीओ आया, तो किस तरह से उसको सब्सक्रिप्शन मिला, उसने एक अपने आप में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. तो मुझे लगता है अगर कंपनी अच्छी है, आप उसकी बेहतरीन मतलब उसकी जो है वो जो डिटेल्स हैं, उसका मैनेजमेंट है, वो क्या काम करती है, किस सेक्टर में है, उसका बढ़िया से उस पर एक रिसर्च करें. क्योंकि आजकल एक धारणा या एक ट्रेंड बन गया है कि लोगों को, जो आपने बात कही ना, कि लोगों को लग रहा है कि आईपीओ में पैसा लगाइए रातों रात पैसा, तो ऐसा अभी हो रहा है. कई ज्यादातर आईपीओ में लोगों को अच्छे प्रीमियम मिले हैं, लेकिन ये भी मतलब एक जब पैसा जाएगा तो आपको वो भी पता नहीं लगेगा. तो इसलिए पैसा आपका है तो कम मतलब मुझे लगता है आपको कॉशियस रहने की जरूरत है बहुत, क्योंकि चूंकि आप ये पैसे का निवेश कर रहे हैं, आपकी मेहनत का पैसा है, तो आप कभी भी इन्वेस्ट करें बहुत ध्यान से कंपनी को बढ़िया से स्टडी कर लें, उसके सेक्टर, उसकी पुराना पास्ट रिकॉर्ड, उसके मैनेजमेंट को, और उसके बाद ही पैसा लगाएं.
India's retail inflation rose to 3.65% on a yearly basis in August, up from a five-year low of 3.54% in July, according to data revealed by Ministry of Statistics and Program Implementation today. This is the second lowest in the last 5 years. The inflation rates for rural and urban areas are 4.16% and 3.14%. The food inflation, which accounts for around half of the overall CPI basket, accelerated to 5.66% in August from a 13-month low of 5.42% in the previous month, the data showed. Food inflation for August 2024 is the second lowest since June 2023. India's industrial production growth rate for the month of July of current financial year stood at 4.8%. According to the ministry, the growth rates of the three sectors, mining, manufacturing and electricity, have registered a growth of 3.7, 4.6 and 7.9% for the month of July 2024. So how worrisome, Siddharth, is the inflation, particularly the food inflation?
I think food inflation is something which RBI is worried about, or is something which it is tracking very closely, because it's almost half of the index is comprises of food inflation, and that is something which is still sticky. So, and the data is probably is what the data CPI inflation numbers are completely as per our matlab on the expected lines, and it was expected that for July, August, the numbers would go down because merely because of statistical or the base effect, and it is expected to inch upwards again, and that is why we are seeing RBI is continuing to stay put with its interest rate policy. They have still not given any signal, or they are basically, what they are saying is that until unless we see a very firm this thing direction of fall in inflation, especially food inflation, only then they would take a call on interest rate. Though there is a clamor or this thing, because as to your question that how do we see, I don't think it's something worrisome, because we've had good monsoon. We should expect, we have good stocks of wheat and rice with us. So I think we should see inflation now. But what happens is, as the RBI governor, Mr. Shaktikant Das, always says, that the last part of it is the most difficult part. So that is something which takes time to come down. So I think, but I don't see any challenges. Especially the best signal to us, or the best part, is that the fall in crude oil prices will also help us fight this inflation. So I don't think we are. It's something which we need to be worried about. But yes, I think RBI is still being cautious, and whatever needs to be taken.
So after seeing this data, will the RBI still be cautious?
Okay. I think so, because just 2 months, and plus if you see again, it is inching up. So they need to be convinced that yes, the downward trajectory is there, and the downward trajectory is permanent, is a firm in nature, that they get a definite evidence. Till they are convinced, or the evidence is definitive that yes, it is under control, until then I don't see RBI cutting rates. Plus I think they have managed our interest rates in a way that it is not impacting or impeding our growth. RBI, as we saw the first quarter GDP data, so a little fall in that, but that was basically because we had elections in India, the government spending was low. So I think as the finance minister has also taken some review meetings with the different departments and advised them to go fast on spending, the capital expenditure plans which they have got for this current. So I think in the remaining 3 quarters we should see things inching up, and RBI as well as World Bank, they are both sticking to India's growth numbers.
इवन आरबीआई ने लास्ट टाइम जब आंकड़े आए थे, और आरबीआई ने इस बात को भी कहा था खुल करके कि हम सारी चीजों को वॉच कर रहे हैं, लेकिन हम इन चीजों में काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं.
हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. और उनको मतलब उनका ये मानना है कि जो उन्होंने 7.2% इस साल के लिए जो भारत की विकास दर का जो उन्होंने एस्टिमेट दिया है, उनका मानना है कि हम इसको इस साल बिल्कुल अचीव करेंगे, एंड देयर fully confident. And Governor Das, immediately after the first quarter GDP data, उन्होंने दोबारा इस बात पे विश्वास जताया कि उनको लगता है कि आने वाले 3 quarters में ये मेकअप हो जाएगा, और हम लोग 7.2% का जो एस्टिमेट है, आरबीआई का एस्टिमेट, उसको हम लोग पूरा करेंगे.
आगे बढ़ते हैं. एशिया के प्रमुख 5 शेयर बाजारों में से 4 में आज बढ़त देखने को मिली. जापान का निक्केई 3.5% के उछाल के साथ बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में करीब 2.5% की तेजी देखी गई, और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.5% से अधिक के लाभ में था. सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स में भी 0.5% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई. दूसरी तरफ चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक आज 0.5% नीचे आया. बात करें यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों की, तो अंतिम समाचार मिलने तक यूरोप के तीनों प्रमुख सूचकांक आज लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे. जर्मनी के डेक्स ने 1% से अधिक की बढ़त बना रखी थी. फ्रांस का कैक और लंदन का फुटसी 0.7% के लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे. सिद्धार्थ, आज तमाम शेयर बाजारों के हालात जो थे लगातार हमें पॉजिटिव ही देखने को मिले, लेकिन चाइना में गिरावट देखी गई, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं?
नहीं, देखिए चाइना से अभी भी एक जो सेंटिमेंट निकल के आ रहा है ना, कि वो स्लो डाउन मोड में है, वहां कंजम्पशन अभी भी जो है उस हिसाब से जो है नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि शायद चाइना भी इस बात पे विचार कर रहा है, जो उनके 5 ट्रिलियन के जो होम लोन मॉर्गेजेस हैं, जो लोन्स हैं, उस पे इंटरेस्ट रेट कटौती करने की बात, ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा हो, ताकि वो स्पेंडिंग बढ़े, शायद कंजम्पशन बूस्ट. तो वो जो आप एक कारण, वो एक कारण होगा कि चाइना में आप देख रहे हैं कि मार्केट्स में आज जो है गिरावट देखी गई.
ऑल मेजर यूएस स्टॉक्स सेटल्ड हायर यस्टरडे विद द बूस्ट इन टेक्नोलॉजी सेक्टर ऑफसेटिंग द इंक्रीज इन कोर इन्फ्लेशन रेट फॉर ऑगस्ट. NASDAQ composite increased more than 2%, S&P 500 rose more than 1%, and Dow Jones Industrial Average was 0.3% up. So that the data released yesterday has dashed hopes for a bigger interest rate cut by the Federal Reserves. What do you have to say?
Yeah, because you saw that their CPI, that inflation data which has come out, so the core inflation data or this one. So I think that, but yes, now people are hoping for a 25 basis cut. They're sure that at least, yeah, if not 50. But I think again there is a flip side to that. If they are entering an era where, or a period where there is slowdown, or so I think that's why I said earlier on the program also that we will see some kind of uncertainties and some hidden uncertainties, and the picture may probably get clearer only after US elections. So till then, probably curtains would be half down, half up. So we'll have to live with those kind of situations. But yes, definitely, I think any rate cut there also is a positive for India, because then people move out of that market and they look at Indian markets.
Okay. Moving on, the National Sample Survey Office today held a conference in New Delhi on upcoming enterprise surveys around the country. The conference focused on engaging with various business associations and stakeholders to discuss surveys that will shape the understanding of India's economic and business landscape. Five major enterprise-related initiatives of the Ministry of Statistics and Program Implementation were discussed at the conference. These initiatives include the Annual Survey of Industries, Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises, Annual Survey of Service Sector Enterprises, Capital Expenditure Survey, and the Economic Census. NSSO Director General Geeta Singh Rathore said that these surveys are designed to provide a comprehensive picture of the non-agricultural sector of the economy on an annual basis and serve as a vital input for compiling GDP and GSDP figures, aiding in macroeconomic estimations.
आज की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें हम लोगों ने एसोसिएशंस को इसलिए बुलाया था कि ताकि वो अपने मेंबर्स को अवेयर करा सकें कि ये सर्वेज होने वाले हैं और उन सर्वेज में हम लोगों को डेटा कलेक्शन में हेल्प होगी. जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी सर्वे का, सारा डेटा हमारे मॉस्पी के वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है. उसको कैसे यूज करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, उसकी भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस और मैनुअल्स उसमें दिए जाते हैं, जिससे कि कोई भी हमारे वेबसाइट पे जाके जिस भी इंटरेस्ट का वो लोग ले सकते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के व्यय की पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना को भी मंजूरी दी है. इस योजना में दोपहिया, तिपहिया, ट्रक, एम्बुलेंस और ई बसें शामिल होंगी. श्री वैष्णव ने बताया कि हाईब्रिड एम्बुलेंस को बढ़ावा दिया जाएगा. इस योजना के तहत ई एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. मरीजों के सुगम परिवहन के लिए ई एम्बुलेंस को बढ़ावा देने की सरकार की नई पहल है. श्री वैष्णव ने कहा कि देशभर में चार्जिंग ढांचा विकसित करने के लिए 88,000 से अधिक स्थानों को चिन्हित किया गया, जिन्हें सरकार शत प्रतिशत सहायता देगी. पीएम ई ड्राइव योजना में अब ई वाउचर शामिल होंगे, जो इलेक्ट्रिक खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेंगे. इलेक्ट्रिक मोड में आगे बढ़ने के लिए सिद्धार्थ, ये योजना कितनी मददगार होगी हमारे लिए आगे?
नहीं, देखिए, सरकार का बिल्कुल इस पर बहुत बड़े पैमाने पर फोकस है. आप देख रहे होंगे, चाहे रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स हो, तो ई व्हीकल्स के उस पर स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी कई आपको सहूलियत दी जा रही है. और इसी प्रकार से भारत सरकार की ये पॉलिसी है कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जाए, ताकि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली ये जो ई व्हीकल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर, इनकी जो वो है पूरी जो क्या बोलेंगे उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करके, ताकि जल्द से जल्द हम इसकी तरफ और आगे बढ़े. हमारे यहाँ पिकअप बहुत फास्ट है, बट वी नीड टू मूव फास्टर.
मूविंग ऑन, द क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज टुडे, एक्सटेंडिंग अ रीबाउंड प्रोपेल्ड बाय कंसर्न ओवर हरिकेन फ्रांसिन्स इम्पैक्ट ऑन द यूएस आउटपुट. In the global crude market, Brent crude was trading 1.22% up to trade at $71.47 per barrel, and the U.S. West Texas Intermediate was trading nearly 1.5% up at $68.24 per barrel when reports last came in.
सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.4% बढ़कर 72,530 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 1.16% ऊपर चढ़कर 85,370 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. मल्टी कम्योडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.56% बढ़कर 72,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 1.45% बढ़कर 84,450 रुपये प्रति किलोग्राम पर था. सिद्धार्थ जी, मार्केट मंत्रा में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू सिद्धार्थ फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस हिट रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई. सेंसेक्स क्रॉसेस 83,000 लेवल एंड निफ्टी सेटल्स एट 25,433 इन इंट्राडे ट्रेड. India's retail inflation at 3.65% in August for the current financial year. And Union Cabinet approves PM E-Drive scheme with an outlay of 10,900 crore. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.